नमस्कार, मैं सुधीर कुमार शर्मा, बीए पार्ट थर्ड, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। आज आपको औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी के बारे में बताने जा रहा हूँ। शहजादे की स्थिति में औरंगजेब ने एक योग्य सेनापति तथा कुशल शासन प्रबंधक होने का परिचय दिया। उत्तराधिकार के युद्ध में गतिशीलता, सैन्य संगठन, नेतृत्व एवं अवसर का सदुपयोग करने का जिस क्षमता का परिचय उसने दिया, उसके कारण वह अपने भाइयों के विरुद्ध सफलता पा सका। निसंदेह उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब की सफलता साम्राज्य के लिए आकांक्षी शहजादों में से सबसे योग्य सेनापति और व्यवहारिक कूटनीतिज्ञ शहजादे की सफलता थी। इस सफलता से मुगल साम्राज्य का संचालन दृढ़ एवं शक्तिशाली हाथों में हो गया। औरंगजेब ने एक लंबे समय तक भी शासन किया, जिससे उसकी शक्ति, दृढ़ता और योग्यता का लाभ साम्राज्य को प्राप्त हो सकता था। औरंगजेब को शांत, दृढ़, विस्तृत और समृद्धशाली साम्राज्य प्राप्त हुआ था। उसने उसका अत्यधिक विस्तार किया, परंतु तब भी औरंगजेब असफल हुआ। उसके समय के अंतिम दिनों में मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया था। औरंगजेब एक महान शासक था, परंतु उसकी असफलता भी अभूतपूर्ण थी। 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुहियुद्दीन मुहम्मद औरंगजेब का जन्म मुमताज के गर्भ से हुआ था। जिस समय शाहजहां का अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह असफल हुआ, उस समय दारा शिकोह और औरंगजेब को नूरजहां के पास बंधक के रूप में रखा गया। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात उनको मुक्त किया गया। औरंगजेब की शिक्षा का अच्छा प्रबंध किया गया। सैनिक शिक्षा के साथ साथ उसने धार्मिक ग्रंथों, अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी भाषा को भी सीखा। 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह फारस राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम कोष्टक में रबिया बीबी कोष्टक बंद से हुआ था। उसका पहला सैनिक अभियान बुंदेलखंड के शासक जुझर सिंह के विरुद्ध हुआ, जिसमें उसने सफलता प्राप्त की। उसके पश्चात औरंगजेब ने समय समय पर दक्षिण के सूबेदार कोष्टक में दो बार कोष्टक बंद, गुजरात का सूबेदार वल्क कोष्टक में मध्य एशिया कोष्टक बंद और कंधार के आक्रमण का सेनापति आदि के रूप में कार्य किया और सैनिक कूटनीतिज्ञ तथा शासन प्रबंधक की दृष्टि से अनुभव प्राप्त किया। उत्तराधिकार के अवसर पर वह दक्षिण का सूबेदार था। अपने भाइयों को मारकर और शाहजहां को कैद करके उसने राज्य सिंहासन पर अधिकार कर लिया। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 31 जुलाई 1658 ईस्वी को और दूसरा राज्याभिषेक खजवां एवं देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद दिल्ली में ही 15 जून 1659 ईस्वी को हुआ तथा अब्दुल मुजफ्फर मुहियुद्दीन मुहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर वह मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ। अब हम आपको औरंगजेब का राजस्व सिद्धांत, जो धार्मिक असहिष्णुता और उसके परिणाम के बारे में बता रहा हूँ। एक पत्र में अपने पिता को औरंगजेब ने लिखा था, जहां पना अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह उसी को उत्तरदायित्व सौंपता है जो अपनी प्रजा की भलाई और उसकी रक्षा करने के कर्तव्य को पूर्ति करता है। संप्रभुता का अर्थ प्रजा की रक्षा है, न कि भोग विलास और अफीम। औरंगजेब ने एक बार कहा था, वास्तव में महान बादशाह वह है जो अपनी प्रजा पर समानता से शासन करना अपने जीवन का प्रमुख लक्ष्य समझता है। बादशाह के कर्तव्यों और उत्तरदायित्व के विषय में औरंगजेब के यह विचार सर्वथा निर्मूल न थे। उसने अपनी प्रजा की भलाई को अपने जीवन का प्रमुख लक्ष्य समझा था, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। अपनी प्रजा की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को ही नहीं, अपितु धार्मिक और नैतिक स्थिति की उन्नति करना भी औरंगजेब अपना कर्तव्य मानता था। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में राज्य की समृद्धि और किसानों की समृद्धि एक अच्छी लगान व्यवस्था पर निर्भर करती थी। औरंगजेब ने किसानों का पूरा ध्यान रखा और व्यापारियों, उद्योगपतियों आदि सभी की उन्नति का प्रयत्न किया, और इसके लिए उसने विभिन्न कानून बनाए। सिंहासन पर बैठते ही औरंगजेब ने करीब 80 करों को समाप्त कर दिया। इन्हीं में से राहदारी कोष्टक में परिवहन कर कोष्टक बंद, पांडारी कोष्टक में चुंगी कर कोष्टक बंद, विभिन्न प्रमुख स्थानीय कर थे जिन्हें आप वाब पुकारते थे। इन करों का भार जनसाधारण पर था। इससे यद्यपि राज्य की आय में करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष की कमी हुई, परंतु जनसाधारण को इससे लाभ हुआ। इसमें संदेह नहीं कि स्थानीय अधिकारियों की बेईमानी के कारण इसमें से बहुत से कर जनसाधारण से इसके बाद भी लिए जाते रहे, परंतु तब भी यह कार्य औरंगजेब को एक अच्छे शासन प्रबंधक की भावना के प्रतीक थे। औरंगजेब न्यायप्रिय था। ओविंगटन ने लिखा है, महान मुगल न्याय का सागर है। औरंगजेब बहुत परिश्रमी था। प्रातःकाल 5 बजे से रात तक औरंगजेब सप्ताह के प्राय सभी दिनों में शासन कार्य में व्यस्त रहता था। अपने अंतिम समय तक उसने कठिन युद्धों से भी मुख नहीं मोड़ा। उसने स्वयं लिखा था, जब तक जीवन की एक भी सांस बाकी है, तब तक परिश्रम और कार्य से छुटकारा नहीं मिल सकता। एलिम्स्टन ने लिखा है, जब बादशाह दक्षिण के युद्धों में लगा हुआ था, उसकी आयु अधिक हो गई थी, तब भी वह शासन के प्रत्येक विभाग की, प्रत्येक छोटे से छोटे अधिकारी की, प्रत्येक संदेश की, प्रत्येक आक्रमण की और प्रत्येक किले को जीतने की योजना और स्वयं ध्यान देता था। इस प्रकार औरंगजेब का राजस्व सिद्धांत महान था और मध्य युग के महान शासक होने के सभी गुण उसमें थे। परंतु औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने इस्लाम के महत्व को समझते हुए कुरान शरीयत को अपने शासन पर आधार बनाया। 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने कुरान के नियमों के अनुरूप इस्लामी आचरण संहिता के नियमों की पुनर्स्थापना के लिए अनेक अध्यादेश जारी किए। बादशाहत उसे न केवल अच्छा शासन करने के लिए प्राप्त हुई थी, बल्कि इस्लाम कोष्टक और उसमें भी सुन्नी मत कोष्टक बंद की सुरक्षा का और विस्तार के लिए भी प्राप्त हुई थी। औरंगजेब का राजस्व सिद्धांत इस्लाम का राजस्व सिद्धांत था। औरंगजेब का प्रमुख लक्ष्य इस कोष्टक भारत कोष्टक बंद दार उल हर्ब कोष्टक का फिरो का देश कोष्टक बंद को दार उल इस्लाम कोष्टक इस्लाम देश कोष्टक बंद बनाना था। औरंगजेब जीवन पर्यंत इस उद्देश्य को भूल न सका और न कभी शासन नीत को इससे पृथक रख सका। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने अपने पुत्र अकबर को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। राजपूतों जाटों सिखों एवं मराठों को संघर्ष करने के लिए बाध्य कर दिया। दक्षिण के सिया राज्य बीजापुर और गोलकुंडा को समाप्त कर दिया और अपने राज्य की बहुसंख्यक हिंदू प्रजा पर शासन और सम्मान धर्म अर्थ आदि सभी प्रकार से इतना दबाव डालने का प्रयत्न किया कि वह हिंदू धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य हो जाए। औरंगजेब का विश्वास था कि उससे पहले के सभी मुगलों ने सबसे गंभीर भूल यह की थी कि उन्होंने भारत में इस्लाम की श्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया था। औरंगजेब ने अपने जीवन में इस कार्य को पूरा करने का प्रयत्न किया। उसके अनुसार यह इस्लाम के मानने वाले बादशाह का एक प्रमुख कर्तव्य था। इस धारणा से औरंगजेब का राजस्व सिद्धांत संकीर्ण बन गया। उसका कर्तव्य सीमित हो गया। उसकी नीति असहिष्णु बन गई और वह अपनी बहुसंख्यक प्रजा का बादशाह न रहा। औरंगजेब स्वयं इस्लाम का विद्वान था। नियम पूर्वक उसके नियमों का पालन करता था। इस्लाम और वह भी उसकी सुन्नी शाखा की श्रेष्ठता में उसका विश्वास था और वह अन्य सभी व्यक्तियों को अपने इस सत्य मार्ग के ले जाने के लिए जीवन भर प्रयत्नशील रहा। उसने यह विचार भी प्रकट किया गया कि व्यक्तिगत धारणा के अतिरिक्त परिस्थितियों ने भी औरंगजेब को धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाने के लिए बाध्य किया था। एक तरफ अकबर की उदार नीति के परिणाम स्वरूप हिंदुओं और राजाओं राजपूत राजाओं को समाज और शासन में प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिल गया और दूसरी तरफ इस्लाम के प्रतिक्रियावादी तत्व जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में प्रभावपूर्ण बनते जा रहे थे। उत्तराधिकार के युद्ध के अवसर पर इन विरोधी तत्वों ने विरोधी शाहजादों के युद्ध में पक्ष लिया। औरंगजेब को प्रतिक्रियावादी तत्वों का सहयोग प्राप्त हुआ जबकि राजपूतों ने उसका विरोध किया। ऐसी स्थिति में युद्ध को जीतने के पश्चात औरंगजेब का हिंदुओं एवं राजपूतों के प्रति शंकालु होना और प्रतिक्रियावादी तत्वों का समर्थन करना स्वाभाविक था। यह विचार तर्कसंगत है परंतु तब भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति का मुख्य आधार उसकी धार्मिक कट्टरता की स्वयं की धारणा थी। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा का खुदवाना बंद कर दिया। नवरोज का त्यौहार मनाना बंद कर दिया। तुलादान और झरोखा दर्शन बंद कर दिया। हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना बंद कर दिया जिन्हें अकबर ने आरंभ किया था। दरबार से गाने नाचने वालों को निकाल दिया। भांग का उत्पादन बंद कर दिया। शराब पीना और जुआ खेलना बंद करने का प्रयत्न किया। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ देने के आदेश दिए और दरबार में होली बसंत दिवाली आदि त्यौहार मनाने बंद कर दिए। इनमें से कुछ कार्य लाभदायक थे परंतु इन कार्यों का मुख्य उद्देश्य दरबार से सिया और हिंदू रीति रिवाजों को समाप्त करना था। इस बात की देखभाल के लिए उसके धार्मिक नियम माने जाए औरंगजेब ने बड़े बड़े नगरों में मुहतसिबों कोष्टक धर्म निरीक्षकों कोष्टक बंद की नियुक्ति की। मुहतसिबों का कर्तव्य था कि वह देखें कि मुसलमान ठीक प्रकार से अपने धर्म का पालन करते हैं या नहीं। उनका कर्तव्य धर्म विरोधियों तथा इस्लाम की निंदा करने वालों का दंड देना भी था। औरंगजेब के समय में उदार सियाओं और सूफियों को भी दंडित किया गया। औरंगजेब इस्लामी कानूनों को अक्षरशः मानने के कारण अपनी कट्टर सुन्नी प्रजा के लिए जिंदा पीर अथवा अपने सादे रहन सहन रोजे और नमाज का नियमित रूप से पालन करने तथा जीवन भर शराब न पीने के कारण शाही दरवेश के रूप में भी जाना जाता था। अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के प्रति औरंगजेब बहुत कठोर था। एक आदेश के अनुसार हिंदुओं को अपने मंदिरों की मरम्मत कराने का अधिकार न रहा और सूबेदारों तथा मुहतसिबों को सभी हिंदू मंदिरों एवं पाठशालाओं को तोड़ देने की आज्ञा दी गई, जिससे हिंदू अपने धर्म और शिक्षा का प्रसार न कर सके। यह तो संभव नहीं हो सकता था कि हिंदुओं के सभी मंदिर और पाठशालाएं समाप्त कर दिए जाते, परंतु बनारस का विश्वनाथ का मंदिर, मथुरा का केशव देव का मंदिर, पाटन का सोमनाथ का मंदिर, प्राय सभी बड़े बड़े मंदिर मुख्यतया उत्तर भारत के उसके समय में तोड़े गए। अधीनस्थ हिंदू राजाओं के राज्यों में भी यही कार्य किया गया और अनेक स्थानों पर मंदिरों की जगह मस्जिदें बना दी गईं। 1679 ईस्वी में सभी हिंदुओं पर जजिया कोष्टक धार्मिक कर कोष्टक बंद लगा दिया गया। यद्यपि उसे 1704 ईस्वी में दक्कन से यह कर उठा लेना पड़ा, उसके जजिया लगाने का उद्देश्य शुद्ध राजनीतिक था, क्योंकि वह मराठों और राजपूतों के खिलाफ मुसलमानों को संगठित करना चाहता था। इस कर के लिए सभी गैर मुस्लिमों को 3 वर्गों में बांटा गया, जिनकी आय 200 दिरहम प्रति वर्ष से कम थी उनको 12 दिरहम प्रति वर्ष, जिनकी आय 200 से 10,000 दिरहम प्रति वर्ष थी उनको 24 दिरहम प्रति वर्ष, 10,000 दिरहम प्रति वर्ष के ऊपर की आय के व्यक्तियों को 48 दिरहम प्रति वर्ष देने पड़ते थे। कारीगरों को अपने परिवार के व्यय को पूरा करने के बाद भी यह कर देना पड़ता था। स्त्रियां, गुलाम, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, भिखारी और आय रहित व्यक्ति इस कर से मुक्त थे। हिंदुओं पर तीर्थयात्रा कर लगाया गया और जबकि मुसलमान व्यापारी व्यापारिक कर से मुक्त रहे। हिंदू व्यापारियों से वस्तु के मूल्य का 5% कर के रूप में लिया गया। जहां तक संभव हुआ हिंदुओं को लगान अधिकारियों के पदों से हटाया गया। 1674 ईस्वी में गुजरात प्रांत में धार्मिक अनुदान के रूप में दी गई हिंदुओं की भूमियां जब्त कर ली गई। 1688 ईस्वी में हिंदुओं के त्योहारों और उत्सवों पर प्रतिबंध लगाया गया तथा उसी वर्ष राजपूतों के अतिरिक्त सभी हिंदुओं को पालकी या अच्छे घोड़े की सवारी करने और हथियार रखने से रोक दिया गया। इस प्रकार हिंदुओं पर विभिन्न प्रकार से दबाव डालने का सिर्फ एक ही आशय था और वह धर्म परिवर्तन। उसने गुरुवार कोष्टक जुमेरात कोष्टक बंद की रात को पीरों एवं मजार एवं अन्य कब्रों पर दिए जलाने की प्रथा को बंद करवा दिया। औरंगजेब ने धार्मिक दबाव, सामाजिक असम्मान और राजनीतिक सुविधाओं से वंचित करना आदि के द्वारा हिंदुओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने का प्रयत्न किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंदू राजा को अन्य विभिन्न प्रकार के लालच भी दिए गए जाते थे। यह कहना उपयुक्त नहीं होगा कि औरंगजेब ने राज्य की आर्थिक कठिनाइयों के कारण हिंदुओं पर यह कर लगाए थे, क्योंकि यदि ऐसा होता तो बहुत से करों को समाप्त करने की नीति न अपनाता। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता ही मूल रूप से इसके लिए उत्तरदायी थी। और इतिहासकार लेन पुल ने लिखा है, अपने इतिहास में मुगलों ने पहली बार एक कट्टर मुसलमान को बादशाह के रूप में देखा था, एक ऐसा मुसलमान जो अपना दमन भी उतना ही करता था जितना कि अपनी प्रजा का, और एक ऐसा बादशाह जो अपने धर्म के लिए अपने राज सिंहासन को छोड़ने के लिए तत्पर था। औरंगजेब 40 वर्ष की आयु में बादशाह बना था। वह व्यवहार कुशल, चालाक और कूटनीतिज्ञ था। ऐसा संभव नहीं था कि वह अपनी नीति के दुष्परिणामों को न समझ सका हो, परंतु तब भी वह मृत्यु पर्यंत दृढ़ता से अपनी धार्मिक कट्टरता की नीति का पालन करता रहा। उसका धार्मिक उत्साह ही इसका मूल कारण था। लेन पुल ने लिखा है, दक्षिण की महान सेना के छत बिछत अवशेषों के बीच पड़े हुए प्रायः 90 वर्षों के मरणासन औरंगजेब की आत्मा में धार्मिक उत्साह की वही अग्नि धधक रही थी जिसके कारण उसी प्रांत में अपनी युवावस्था के समय में उसने अपने सूबेदार की पोशाक को फेंक कर एक भिखारी फकीर के निकृष्ट वस्त्र पहन लिए थे। उसकी धार्मिक असहिष्णुता के कार्यों पर विचार करते हुए डॉक्टर एस आर शर्मा ने लिखा है, ये सभी कार्य एक योग्य शासक अथवा एक निर्माणकर्ता राजनीतिज्ञ के नहीं थे, बल्कि एक अंधी धर्मांधता का विस्फोट था जो निसंदेह अन्य सभी क्षेत्रों में मेधावी औरंगजेब के लिए शोभनीय न था। इस प्रकार औरंगजेब की योग्यता, गुण और नीति आदि सभी उस व्यक्तिगत धर्मांधता के आगे दब गए जिसका प्रयोग उसने एक शासक की बात किया। औरंगजेब ने अकबर द्वारा आरंभ की गई धार्मिक सहिष्णुता की नीति में आमूल परिवर्तन कर दिया, और यही उसके लिए और मुगल साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि के लिए घातक सिद्ध हुआ। औरंगजेब के इस राजस्व सिद्धांत और धार्मिक असहिष्णुता की नीति के कारण साम्राज्य में अनेक विद्रोह हुए। सतनामियों, जाटों और सिखों के विद्रोह इसी कारण हुए थे। राजपूतों के विद्रोह और मराठों के संघर्ष का कारण राजनीतिक के साथ साथ धार्मिक भी था। इनसे राज्य में अशांति, अव्यवस्था और निरंतर संघर्ष हुए जिनके कारण स्वयं औरंगजेब असफल हुआ और मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी भी हुआ। अब हम औरंगजेब के समय में हुए विद्रोहों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। पहला, जाटों का विद्रोह। औरंगजेब की धार्मिक नीति के विरुद्ध पहला संगठित विद्रोह जाटों ने किया। मथुरा का स्थानीय अधिकारी अब्दुल नबी हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था और हिंदू स्त्रियों को अपमानित कर रहा था। 1661 से 1662 ईस्वी में उसने एक हिंदू मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई और वह दारा सिकोह द्वारा केशव राय के मंदिर को भेंट में दिए गए एक जंगल को भी उठा ले गया। उसके अत्याचारों से दुखी होकर 1669 ईस्वी में स्थानीय जाटों ने गोकुल के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, अब्दुल नबी को मार दिया और सादाबाद की तहसील में लूट मार की। 1670 ईस्वी में मुसलमानों ने वीर सिंह मुंदेला द्वारा बनवाए गए केशव राय के प्रसिद्ध मंदिर को तोड़ दिया और उसके स्थान पर मस्जिद की स्थापना की। इससे गोकुल का विद्रोह बढ़ता गया। उसके समर्थकों की संख्या 20,000 तक पहुंच गई और उसने मुगलों की छोटी छोटी सेनाओं को परास्त करने में सफलता प्राप्त की। अंत में तिलपत के युद्ध में जाट परास्त हुए। गोकुल पकड़ा गया, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उसके परिवार के सदस्यों तथा बंदी बनाए गए जाटों को या तो इस्लाम में परिवर्तित कर लिया गया अथवा मार दिया गया। परंतु जाटों का विद्रोह समाप्त नहीं हुआ। 1686 ईस्वी में जाटों ने राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह किया। राजा राम ने कई मुगल अधिकारियों को प्राप्त किया, आगरा तक आक्रमण की और कहा जाता है कि उसने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया। परंतु 1688 ईस्वी में राजा राम एक युद्ध में परास्त हुआ और मारा गया। उसके पश्चात राजा राम के भतीजे चूड़ामण ने विद्रोह जारी रखा। जाटों का यह विद्रोह औरंगजेब की मृत्यु तक चलता रहा और अंतोगत्वा जाटों ने मथुरा के निकट भरतपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने में सफलता प्राप्त कर ही ली। दूसरा विद्रोह सतनामियों का विद्रोह। 1672 ईस्वी में सतनामियों का विद्रोह हुआ। नारनौल और मेवात जिलों में सतनामियों का धार्मिक संप्रदाय प्रख्यात विख्यात था। सत्य ईश्वर में विश्वास करने के कारण वे अपने को सतनामी पुकारते थे। वे अपने संपूर्ण शरीर के बालों को मुंड कर रखते थे, इस कारण उन्हें मुंडिया भी पुकारते थे। एक सतनामी साधु और मुगल सैनिक के झगड़े के से इस विद्रोह का आरंभ हुआ। स्थानीय फौजदार उनके विद्रोह को न दबा सका और जो छोटी छोटी सेनाएं औरंगजेब ने भेजी उन्हें परास्त कर दिया गया। यह भ्रांति फैल गई कि सतनामी जादू टोना जानते हैं और उनके शरीर पर बंदूक की गोलियों का कोई प्रभाव नहीं होता। अंत में औरंगजेब ने कुछ कागजों पर कुछ लिखकर उन्हें अपने सैनिकों में आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए अपनी सेना के झंडों पर बधवा दिया और तोपखाने के साथ उस सेना को भेजा। सतनामियों ने कट्टरता से युद्ध किया परंतु वे परास्त हुए। करीब 2000 सतनामी युद्ध में मारे गए और बाकी सतनामियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तीसरा विद्रोह सिख संप्रदाय और उसका विद्रोह। 1469 से 1708 ईस्वी तक के समय में सिखों के 10 गुरु हुए। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और सिखों के प्रथम गुरु नानक थे। 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी कोष्टक, अब उसे ननकाना साहिब पुकारते हैं, कोष्टक बंद नामक स्थान पर एक खत्री परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता मेहता कालू पटवारी थे। आरंभ में इन्होंने राज्य सेवा स्वीकार की, विवाह किया और उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुईं। परंतु 27 वर्ष की आयु में इन्होंने नौकरी और परिवार दोनों ही छोड़ दिए तथा वर्षों तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे। इन्होंने असम से लेकर बगदाद तक और तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक भ्रमण किया। वह विभिन्न साधुओं और फकीरों के संपर्क में आए। उन पर हिंदू और इस्लाम दोनों ही धर्मों का प्रभाव था। वह सभी धर्मों की समानता में विश्वास करते थे। एकेश्वरवाद तथा मानव मात्र की एकता गुरु के मौलिक सिद्धांत थे। अपने अंतिम दिन उन्होंने अपने परिवार के साथ पंजाब में करतारपुर नामक स्थान पर व्यतीत किया। गुरु नानक एक धर्म सुधारक और समाज सुधारक थे। अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति उन्हें तीव्र असंतोष था। उनका कहना था, यह युग एक कटार है और राजा कसाई, न्याय ने पंख लगा लिए हैं और भाग गया है। मैं दुख से रोता हूं कि किस प्रकार उद्धार होगा। उन्होंने कहा था, आजकल व्यक्ति केवल शक्ल और नाम से आदमी है, अन्यथा कार्यों से वो कुत्ते हैं। इन विचारों को लेकर उन्होंने धार्मिक समानता, एक ईश्वर और सत्कर्मों पर बल दिया। वह मूर्ति पूजा, जाति भेदभाव और धार्मिक समानता मुल्ला व पंडिता की श्रेष्ठता के विरुद्ध थे। उन्होंने अवतारवाद और कर्मकांड का विरोध किया। वह हिंदू और मुसलमानों में अंतर नहीं करते थे। उन्होंने समानता और सत्कर्मों पर सबसे अधिक बल दिया। नानक ने धर्म प्रचार के लिए स्थान स्थान पर संगतों की स्थापना की और अपनी मृत्यु के पश्चात अपने विचारों को फैलाने का उत्तरदायित्व अपने योग्य शिष्य लहना को सौंप दिया। दूसरे गुरु अंगद कोष्टक लहना ने, कोष्टक बंद, 1538 ईस्वी में नानक की मृत्यु हो जाने पर इस कार्य को सफलता से किया। उन्होंने गुरु नानक के सरल उपदेशों का प्रचार किया और स्थानीय भाषा में उनके उपदेशों का संकलन किया। इन्होंने प्रेरणादायी कविताओं एवं गीतों की रचना की, जिन्हें एक पुस्तक के रूप में इन्होंने संकलित किया, जो बाद में आदि ग्रंथ के नाम से विख्यात हुआ। गुरु अंगद 1539 से 1552 ईस्वी के समय में लंगर की व्यवस्था को अस्थायी रूप प्रदान किया। उससे अंतरजातीय खान पान को प्रोत्साहन हुआ, जाति बंधन शिथिल हुए और सिखों में सामाजिक समानता की भावना का विकास हुआ। 1552 ईस्वी में गुरु अंगद की मृत्यु हुई। उन्होंने भी अपनी मृत्यु के अवसर पर अपने गुरु की गद्दी अपने किसी पुत्र को न देकर एक शिष्य अमरदास को सौंपी। तीसरे गुरु अमरदास कोष्टक 1552 से 1574 ईस्वी कोष्टक बंद, स्वयं खेती और व्यापार करते थे और उन्होंने कभी भी अपने शिष्यों को संसार छोड़ने के लिए नहीं कहा। अब उन्होंने अपने शिष्यों को पारिवारिक संत होने का उपदेश दिया। उन्होंने सिखों के संप्रदाय को संगठित किया। उन्होंने इस कार्य के लिए 22 गद्दियां बनाई, जिनमें से प्रत्येक गद्दी का प्रधान गुरु के द्वारा नियुक्त किया जाता था। उस प्रधान व्यक्ति का कर्तव्य सिखों की सुरक्षा और गुरु के उपदेशों का प्रचार करना था। गुरु अमरदास स्वयं बहुत साधारण भोजन करते थे, जबकि उनके लंगर में प्रत्येक गरीब और अमीर तथा हिंदू और मुसलमान को बहुत अच्छा भोजन मिलता था। गुरु अमरदास ने लंगर व्यवस्था में एक और परिवर्तन कर दिया। वह उस व्यक्ति से नहीं मिलते थे जो उनके लंगर में भोजन नहीं करता था। इस प्रकार उन्होंने जाति व्यवस्था पर और अधिक कठोर आघात किया। गुरु अंगद के पुत्र बाबा श्रीचंद ने अपना एक संप्रदाय कोष्टक उदासी कोष्टक बंद बना लिया था। उनके विरोध के कारण गुरु अमरदास ने अपने स्थान को बदल दिया और गोइंदवाल चले गए। गुरु अमरदास ने सती प्रथा का विरोध किया, विवाहों की क्रियाओं को साधारण बनाया, पर्दा प्रथा पर का विरोध किया और नशीली वस्तुओं मुख्यतया शराब के प्रयोगों का विरोध किया। उन्होंने विवाह पद्धति को सरल बनाते हुए एक नवीन स्वरूप प्रदान किए जिसे लवण पुकारा गया। उन्होंने इसी प्रकार मृतक संस्कार को भी सरल बनाया। गुरु अमरदास ने अपने उत्तराधिकारी रामदास को देवत्व गुणों से युक्त बताया और उन्होंने सिखों से मांग की कि वे अपने संपत्ति और आत्मा गुरु की इच्छा पर छोड़ दें। अकबर ने पंजाब में गुरु अमरदास से भेंट की थी और उनसे प्रभावित हुआ था। अकबर ने गुरु और उनके शिष्यों को तीर्थयात्रा कर से मुक्त कर दिया था और उनकी पुत्री नाम से कई गांव दे दिए थे। 1574 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। चौथे गुरु रामदास 1574 से 1581 ईस्वी पर अब भी अकबर की कृपा रही और उसने उन्हें 1577 ईस्वी में 500 बीघा जमीन दी जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। यहीं पर अमृतसर नगर का बसा और अमृतसर का स्वर्ण मंदिर बना। 1581 ईस्वी में गुरु रामदास की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गद्दी सौंपी। उस समय से गुरु की गद्दी पैतृक आधार पर निश्चित होने लगी। यह विचार भी गुरु रामदास ने दिया कि एक गुरु की आत्मा दूसरे गुरु में स्वतः ही चली जाती है। इस कारण प्रत्येक गुरु का सम्मान समान रूप से किया जाना चाहिए। पांचवें गुरु अर्जुन की आयु गद्दी प्राप्त करने के समय केवल 18 वर्ष की थी। अपने समय 1581 से 1606 ईस्वी में उन्होंने सिख संप्रदाय को शक्तिशाली और संपन्न बनाने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने जगह जगह संगतों की स्थापना की। अस्थायी रूप से धर्म प्रचारक कोष्टक मसद और मेउरा कोष्टक बंद नियुक्त किए और धर्म प्रचार के अतिरिक्त उनसे सिखों से ईश्वर के लिए धन लेने का कार्य भी किया। उन्होंने सिखों को व्यापार और कृषि की ओर ध्यान देने को कहा। उन्होंने सिखों को शक्तिशाली बनने के लिए कहा। स्वयं गुरु का दरबार मुगल बादशाह की तरह शान शौकत से भरपूर था। यद्यपि गुरु को स्वयं इससे कोई लगाव न था, गुरु अपने शिष्यों से आध्यात्मिक और नैतिक प्रगति के साथ साथ भौतिक और शारीरिक प्रगति की भी आशा करते थे। उनका कहना था, जो व्यक्ति सैनिक प्रशिक्षण लेता है वह युद्ध स्थल में निर्भय हो जाएगा। जो व्यक्ति शस्त्र लेकर विजय या मृत्यु का निश्चय करता है और जो व्यक्ति मृत्यु के अवसर पर सत्य नाम ईश्वर का स्मरण करता है वह कई जन्मों के पापों से मुक्त हो जाएगा और निर्वाण प्राप्त होगा। उनके इन्हीं विचारों एवं प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप सिख संप्रदाय पंजाब में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया। गुरु अर्जुन ने अपने और अपने पिछले गुरुओं के उपदेशों का संकलन कराया और आदि ग्रंथ की रचना की जो सिखों की धार्मिक पुस्तक है। गुरु अर्जुन देव ने ही अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया और 1604 ईस्वी में वहां आदि ग्रंथ की स्थापना की। वहीं पर उन्होंने सूफी संत मियां मीर द्वारा हरि मंदिर का निर्माण कराया। खुसरो के विद्रोह के अवसर पर गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और कुछ आर्थिक सहायता भी प्रदान की। इससे बादशाह जहांगीर उनसे असंतुष्ट हो गया और उसने गुरु से 2 अथवा 2.5 लाख रुपया जुर्माना मांगा। गुरु ने उसे देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था, मेरे पास अपना कोई धन नहीं है, मेरा धन तो गरीबों और असहायों के लिए है। जहांगीर ने गुरु की संपत्ति को जब्त करने तथा गुरु और उसके परिवार के सदस्यों को बंदी बनाने के आदेश दिए। बंदी गृह में गुरु अर्जुन को कठोर यातनाएं देकर मार दिया गया। 1606 ईस्वी में जहांगीर ने सिख संप्रदाय पर कोई आक्रमण नहीं किया, परंतु गुरु अर्जुन के साथ किया गया उसका व्यवहार अनुचित था। सिखों ने इसे मुगलों द्वारा अपने धर्म पर पहला आक्रमण माना। उस समय से सिखों को शस्त्र रखने की आवश्यकता अनुभव हुई। गुरु अर्जुन की पीड़ा युक्त मृत्यु ने सिखों को सैनिक संप्रदाय और गुरु को सैनिक संत बनने की भावना प्रदान की। गुरु अर्जुन ने मरते समय अपने पुत्र और उत्तराधिकारी हरगोविंद को संदेश दिया था कि उससे कहना कि वह शोक न मनाए और न पुरुषत्वहीन व्यक्ति की भांति रोए, बल्कि ईश्वर की प्रार्थना करे। अपने सिंहासन पर वह पूर्ण शास्त्र धारण करके बैठे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार बड़ी से बड़ी सेना रखे। छठे गुरु हरगोविंद 1606 से 44 ईस्वी की आयु उस समय केवल 11 वर्ष की थी। उन्होंने अपने पिता की इच्छा का अक्षरशः पालन किया। 10 दिन तक उन्होंने ग्रंथ साहिब का पाठ कराया और उसके पश्चात अपने कमर में 2 तलवारें बांधकर वह अपनी गद्दी पर बैठे। उन्होंने अपने समर्थकों को मांस खाने की आज्ञा दी। उन्होंने तख्त अकाल बंगा की नींव डाली और अमृतसर की किलेबंदी की। उन्होंने धार्मिक शिक्षा के साथ साथ अपने शिष्यों को सैनिक शिक्षा भी प्रदान की। उन्होंने ही दरबार में नगाड़ा बजाने की प्रथा को आरंभ किया, जो राजसत्ता का प्रतीक था। जहांगीर ने उनसे उनके पिता पर किए गए जुर्माने को मांगा, जिसे उन्होंने देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण वे प्राय 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में बंदी रहे। वहां से मुक्त होने के पश्चात उनके संबंध जहांगीर से ठीक रहे। शाहजहां के आरंभकाल 1628 ईस्वी में शाहजहां की एक प्रिय बाज के गुरु के खेमे में उड़कर आ जाने और गुरु के उसे वापस न देने के कारण गुरु का मुगलों से झगड़ा आरंभ हो गया। उस समय तो गुरु ने शाही सेना की टुकड़ियों को प्राप्त करने में सफलता पाई, परंतु अंत में अपने धर्म को असुरक्षित समझकर वह कश्मीर की पहाड़ियों में स्थित किरतपुर नामक स्थान पर चले गए। वहीं 1644 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। उनके पश्चात 7वें गुरु हर राय कोष्टक 1644 से 61 ईस्वी कोष्टक बंद हुए, जिनसे दारा सिकोह अक्सर मिलता रहता था। जब औरंगजेब मुगल बादशाह बना, तब हर राय सिखों के गुरु थे। गुरु हर राय दारा सिकोह से मेल जोल था, इस कारण औरंगजेब ने गुरु को दरबार में आने का आदेश दिए। गुरु हर राय ने अपने पुत्र राम राय को दरबार में भेजा, जिसे औरंगजेब ने अपने साथ मिला लिया। इस कारण गुरु हर राय ने गद्दी अपने दूसरे पुत्र हरकिशन को सौंपी। राम राय ने औरंगजेब की सहायता लेकर गद्दी पर अधिकार करने का प्रयत्न किया, जिसके कारण गुरु हरकिशन को दरबार में बुलाया गया, परंतु 8वें गुरु हरकिशन 1661 से 1664 ईस्वी की 1664 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके पश्चात सिख संप्रदाय ने हरगोविंद के पुत्र तेग बहादुर को अपना गुरु माना। तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी सिखों के 9वें गुरु हुए। उन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीति का खुले तौर से विरोध किया और स्थान स्थान पर जाकर उसकी नीति के विरोध में प्रचार किया। औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली बुलाया और बंदी बना लिया। गुरु को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा गया और उनके इनकार करने पर 5 दिन तक विभिन्न यातनाएं देते हुए उन्हें एक विद्रोही करार देकर कत्ल कर दिया गया। दिल्ली जाने से पहले गुरु तेग बहादुर ने अपने 19 वर्षीय पुत्र गुरु गोविंद सिंह को अपनी गद्दी सौंप दी थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने गुरु की गद्दी को समाप्त कर दिया और कहा, जहां भी गुरु के उपदेशों को मानने वाले 5 सिख एकत्रित होंगे, मैं वहां उपस्थित हूंगा। अपने समय 1675 1778 कोष्टक बंद में गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को कट्टर सैनिक संप्रदाय बनाने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने जीवन पर्यंत औरंगजेब की कट्टरता और धर्मांधता का विरोध किया। उन्होंने सिख संप्रदाय को खालसा पुकारा, सिखों को अपने नाम के आगे सिंह लगाने का आदेश दिया और प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने के आदेश दिए। उन्होंने खाने पहनने और विवाह संबंधों के बारे में सिखों को पूर्ण एकता और समानता प्रदान की। उन्होंने कहा, मैं 4 वर्णों के व्यक्तियों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को बर्बाद कर दूंगा। उन्होंने सिखों को पूर्ण सैनिक शिक्षा दी, उनमें आत्मविश्वास और साहस उत्पन्न किया तथा बहुत शीघ्र प्रायः 80,000 सैनिकों की खालसा सेना तैयार कर ली। गुरु गोविंद सिंह अपने पिता की मृत्यु और औरंगजेब की कट्टर धर्मांधता को कभी न भुला सके और उन्होंने औरंगजेब की धर्मांधता का जवाब धर्मांधता से दिया। गुरु गोविंद सिंह के विरुद्ध औरंगजेब ने कई सेनाएं भेजी। स्थानीय मुगल अधिकारियों ने निरंतर उनसे युद्ध किए और 5 बार उनके आनंदपुर स्थित निवास को घेरा, परंतु गुरु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लड़ते रहे। इस संघर्ष में उनके 2 पुत्र मारे गए, अन्य 2 पुत्रों को जीवित दीवार में चिनवा दिया गया और स्वयं वह भी विभिन्न कठिनाइयों में रहे। अंत में वह दक्षिण भारत चले गए और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ही उत्तर भारत आए। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र बहादुर शाह ने अपने भाइयों के विरुद्ध उनसे सहायता मांगी और वह उसकी तरफ से युद्ध करने के लिए दक्षिण भारत गए। वहीं पर गोदावरी नदी के तट पर नादिर नामक एक पठान ने छुरा मारकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। प्राय 2 माह पश्चात उन्होंने अपना अंत समय निकट जानकर अपने शरीर को चीता को सौंप दिया। अग्निदाह 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह ने अपने मृत्यु पर्यंत औरंगजेब और उसकी धार्मिक धर्मांधता की नीति के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने पंजाब में सिखों को एक शक्तिशाली संप्रदाय बनाने में सफलता पाई, जिसके कारण आगे आने वाले समय में पंजाब की राजनीति में सिखों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कनिंघम ने उनके बारे में लिखा है, सिखों के अंतिम गुरु अपने लक्ष्य की पूर्ति अपने जीवन में न देख सके, परंतु उन्होंने एक पराजित समूह व्यक्ति समूह की सोई हुई शक्तियों को जागृत कर दिया और उन्हें सामाजिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय महत्ता की उत्कृष्ट अभिलाषा के श्रेष्ठ और उपयुक्त आदर्श से प्रेरित किया।